अरुणिमा ने आस्तिक के मुंह में दलिये का एक चम्मच दिया। आस्तिक का पूरा मुंह दलिये से भर गया। वैसे इसका स्वाद इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन आस्तिक सिर्फ अरुणिमा को देखते हुए उसे चबा रहा था। उसने जैसे ही एक बाइट निकाला, अरुणिमा ने दूसरा चम्मच उसकी ओर करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये काफी अच्छा बना है। चलो अब ये भी खत्म करो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा के हाथ से वो दलिये का चम्मच लिया और उसे दलिये की कटोरी में वापस रख दिया। उसने अरुणिमा के हाथ से दलिये की कटोरी को लेकर साइड टेबल पर रखा और कहा, ये मैं बाद में खा लूंगा, पहले तुम मेरे सवालों के जवाब दो। अरुणिमा का दिल एक बार फिर से घबरा गया था। वो आस्तिक के सवालों से बचना चाहती थी, लेकिन इस समय समस्या ये थी कि वो आस्तिक से दूर नहीं रह सकती थी। आस्तिक बीमार था और उसकी हालत कुछ खास नहीं थी, इसलिए अरुणिमा को उसके आसपास ही रहना था। वो जानती थी कि जब तक वो आस्तिक के सवालों के जवाब नहीं दे देगी, आस्तिक उसे चैन से छोड़ेगा नहीं। इसलिए आखिरकार उसने हिम्मत करने का फैसला किया और आस्तिक से कहा, क्या जानना चाहते हो? यही ना कि मैं तुम्हारे लिए इस तूफान में बाहर क्यों गई और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी इंसान होता तो शायद मैं उसके लिए भी यही करती, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती हूं। लोगों की मदद करना मेरा नेचर है, क्या करूं अगर मैं अपना नेचर नहीं बदल पा रही हूं तो? इसीलिए तुम्हारे लिए मैं उस तूफान में तुम्हें ढूंढने के लिए गई थी। अरुणिमा ने कहा तो दिया, लेकिन आस्तिक की नजरें सिर्फ अरुणिमा के ऊपर थीं। वो उसके शब्दों को सुन रहा था, लेकिन ये शब्द उसके ऊपर कुछ असर नहीं कर रहे थे। उसने अपने आस्तिक अंदाज में अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फोल्ड किया और आराम से बेड पर बैठ गया। वो अरुणिमा के सामने बैठा हुआ था। उसके बैठने के अंदाज से ही अरुणिमा के रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये इंसान कब क्या कर जाए और इसका अगला रिएक्शन क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। वो नजरें चुराने लगी थी, क्योंकि उसके शब्दों में जरा भी सच्चाई नहीं थी। नहीं, ये बात सच्ची थी कि दूसरों की मदद करना उसका नेचर है, लेकिन वो सिर्फ आस्तिक के लिए ही बारिश में नहीं जाएगी, इस बात पर थोड़ा सा कन्विंस होना मुश्किल लगता था। आस्तिक ने अरुणिमा को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुमने मुझे ढूंढने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, जबकि बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद भी तुम उस तूफान में मुझे ढूंढने के लिए गई थीं। और क्या कहा तुमने, कि मेरी जगह कोई और भी इंसान होता तो तुम उसे भी ढूंढने के लिए जाती? जहां तक मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं करती। क्या तुम्हारा नेचर दूसरे इंसान की मदद करने के लिए तूफान में जाएगा? और दूसरी बात, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी इंसान होता तो चाहे मैं तूफान में मर ही क्यों ना जाऊं, वो कभी मुझे ढूंढने के लिए नहीं आता और मेरी फिक्र नहीं करता। पर तुमने ऐसा किया। वो तुम ही थी ना जिसने मुझे एक्सीडेंट वाली जगह से बाहर निकाला, जबकि तुम्हारे पास मौका था। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका था। तुम मुझसे दूर भाग सकती थी, मुझे वहां पर उस हाल में छोड़कर तुम कहीं ऐसी जगह जा सकती थी जहां तक मैं तुम पर कभी नहीं पहुंचता। तुम्हारा बुरा सपना कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। तुम उस आदमी से दूर भाग सकती थी जिसने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी। मैंने बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हारे साथ रिलेशन बनाए, एक साल तक तुम्हें घर में बंद रखा, तुम्हें इतना टॉर्चर किया जिसकी वजह से तुम खुद अपनी जान देने को मजबूर हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी तुमने मेरे लिए ऐसा किया, क्यों किया ये सब? आस्तिक सही कह रहा था, कोई भी समझदार इंसान इस हालत में आस्तिक की मदद बिल्कुल भी नहीं करता, जबकि उसके पास एक मौका था वहां से भाग जाने का। लेकिन फिर भी अरुणिमा को वो वक्त एक जकड़न से महसूस हुआ। उसका सीना धड़क रहा था ये सोचकर कि आस्तिक मुसीबत में है। उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो अरुणिमा के खुद के पास भी नहीं था। उसे बस इतना पता था कि आस्तिक को तेज तूफान से डर लगता है, और उस वक्त आस्तिक को अरुणिमा की जरूरत थी। लेकिन अरुणिमा के शब्द नहीं निकल रहे थे। आस्तिक के शब्दों ने उसे अंदर तक इतना झकझोर कर रख दिया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही थी, और उसे कुछ ना कहता देख आस्तिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए कहा, ऐसे चुप मत बैठी रहो, मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। मुझे जवाब चाहिए। तुम क्यों मुझे बचाना चाहती थी? या मैं ये कहूं कि तुम क्यों उस शख्स को बचाना चाहती थी जो तुम्हें दर्द देता है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है? मैं तुम्हारी हर परेशानी की वजह हूं, ये सब जानते हुए भी तुमने मेरी जान बचाई। क्यों अरुणिमा, क्यों? आस्तिक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर अरुणिमा कांप गई। वो बैठे बैठे किसी पत्ते की तरह कांप रही थी, लेकिन उसके मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकले। आस्तिक ने उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, कुछ तो बोलो अरुणिमा, कुछ तो बोलो, चुप मत रहो, मुझे सुनना है, तुम्हारे मुंह से वजह जाननी है। कुछ बोलो, अपने मुंह से एक शब्द तो निकालो कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। क्योंकि तुमने भी मुझे बचाने के लिए आग में कूद गए थे और अपनी जान जोखिम में डाली थी। मुझे बचाने के लिए तुम उस जलते हुए कमरे में आए थे और मुझे संभाला था। मेरा बदन जल रहा था और तुमने मुझे अपनी बाहों में उठाया था ताकि आग की लपटें मुझ तक ना पहुंच सकें। आस्तिक के हाथ ढीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे अरुणिमा के कंधे से हट जाते हैं। वो हैरानी से अरुणिमा को देख रहा था। अरुणिमा की आंखें लाल हो गई थीं और वो रोने लगी थीं। उसने गहरी सांस ली और आस्तिक से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन जब से तुमने मेरी जान बचाई है तब से मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे पता है तुमने जो मेरे साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जब मुझे तुम्हारे ऊपर खतरे का एहसास हुआ तो मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि मेरी जान भी तुम्हारी कर्जदार है। तुमने मुझे भले ही दर्द और तकलीफ दी है, लेकिन मेरी जान बचाने वाला रक्षक भी तुम ही हो। अरुणिमा गुस्से में अपनी जगह पर खड़ी होती है। आस्तिक की नज़र अभी भी अरुणिमा के ऊपर थी। अरुणिमा ने उसे देखते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं उस इंसान को बचाने के लिए तूफान में नहीं गई थी जिसने मुझे दर्द दिया, मुझे तकलीफ थी और मुझे इस हद तक तोड़ दिया कि मैं खुद की जान लेने पर मजबूर हो गई थी। मैंने उस इंसान की जान बचाई है जिसने मेरी जान बचाई थी। तुमने मेरे लिए मेरे जीने की वजह को बरकरार रखा है, इसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। क्या कहते हो, तुम्हारे बिजनेस की लैंग्वेज में चुकाया हुआ एहसान। अब हिसाब बराबर हुआ दोनों तरफ से। उसके बाद अरुणिमा वहां पर एक और मिनट नहीं रुकती है। वो पास के दवाखाने में जाती है और एक दवाइयों का पैकेट निकालती है, जो कि बुखार की दवाइयां थीं जो पिछली बार अरुणिमा आस्तिक के लिए लेकर आई थी। उसने वो दवाई आस्तिक के पास रख दी और उसके बाद चुपचाप कमरे से चली गई। जाने से पहले उसने दरवाजा बंद कर दिया। आस्तिक के कानों में अभी भी अरुणिमा के शब्द गूंज रहे थे। आसपास का माहौल उसके लिए एकदम ठंडा हो गया था और उसकी सांसें बेइंतहा अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रही थीं।
कल तक आस्तिक सिर्फ यही जानता था कि अरुणिमा की जरूरत उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए है, और शायद इसीलिए उसने अरुणिमा को जलते हुए घर से भी बचाया था। लेकिन क्या सच में यही वजह थी? बाहर अरुणिमा भी यही सोच रही थी। वो रोते हुए नीचे हॉल में आती है और अपने आंसुओं को साफ करती है। आस्तिक ने जब उसे ये कहा था कि उसने अरुणिमा को सिर्फ अपने मतलब के लिए बचाया है, तो अरुणिमा ने इस बात पर यकीन कर लिया था, और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने आज आस्तिक की जान इस तूफान से क्यों बचाई है। लेकिन जब आस्तिक ने उसे ये सवाल किया और वो जवाब जानने के लिए पागल हो रहा था, तो अरुणिमा को समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। जो पहला जवाब उसके दिमाग में आया वो उसने आस्तिक के सामने रख दिया, हालांकि सच्चाई ये नहीं थी। और दूसरी तरफ कमरे में बैठा आस्तिक खुद को ही अंदर बेचैन और दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसी दिन जब अरुणिमा का किडनैप हुआ, आस्तिक के लिए एक अलग ही माहौल था। आस्तिक पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया था और उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी, लेकिन वो घर में ना रहते हुए भी अरुणिमा और घर की पूरी इन्फॉर्मेशन रख रहा था। उसे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसे बार बार अरुणिमा को अपने लैपटॉप पर देखने का मन करता है। घर में लगे CCTV कैमरे और हिडन कैमरे उसे बार बार अरुणिमा के दीदार करवाते हैं। आस्तिक को पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन ऐसा करना उसे काफी अच्छा भी लग रहा था। कुछ CCTV कैमरों के बारे में तो अरुणिमा को पता था, लेकिन हिडन कैमरों के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। आज आस्तिक की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए पिछले कुछ घंटों से वो अपने लैपटॉप पर अरुणिमा को देख भी नहीं पा रहा था। अपनी मीटिंग रूम में बैठे हुए उसका काम सिर्फ प्रोजेक्टर को देखना ही था। मीटिंग रूम से निकलने के बाद आस्तिक तुरंत अपना लैपटॉप ऑन करता है और अरुणिमा को देखने के लिए पूरे घर के CCTV फुटेज और हिडन कैमरे ऑन कर देता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है, अरुणिमा उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने हर जगह तलाश किया लेकिन अरुणिमा उसे कहीं नहीं दिखी। तब जाकर उसने CCTV रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड किया और कुछ घंटे पीछे गया जब अरुणिमा उसे नज़र आई। लेकिन जो आखिरी चीज़ उसने देखी वो ये थी कि अरुणिमा तैयार हो चुकी है और वो तैयार होकर एक ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ रही है। ये देखकर आस्तिक की आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उस ड्राइवर ने आस्तिक की कंपनी की यूनिफॉर्म पहनी है।